जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षट् श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षट् श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 11। मधु भोज दशाहार कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तां नागर्भोगवतीम् इव। मधुभोज दशार्हारः कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तां नागर्भोगवतीमिव। मधुभोज दशार्हारः कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तां नागर भोगवतीमिव। मधुभोज दशार्हारः मधु मधु भोज भोज दशार्हः दशार्ह अर्हः अर्ह कुकुर कुकुर अंधक अंधक वृष्णिभिः वृष्णि कुल वालों के द्वारा आत्मतुल्य अपने सदृश बल है शक्ति से गुप्ताम रक्षित नागे है नागों द्वारा भोगवतीम नागलोक की राजधानी इव सदृश। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद जिस प्रकार नागलोक की राजधानी नागों के द्वारा रक्षित है उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज मधु दशार अर्ह कुकुर अंधक आदि द्वारा की जाती थी। तात्पर्य नागलोक पृथ्वी लोक के नीचे स्थित है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, लेकिन उस लोक का अंधकार नागों अर्थात स्वर्गिक सर्पों के शिरों पर स्थित मणियों के प्रकाश से दूर होता है। यह भी कहा जाता है कि वहां पर नागों के भोग विलास के लिए सुंदर बगीचे सरोवर आदि हैं। यहां पर यह भी कहा गया है कि यह स्थान नागरिकों द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित है। उसी प्रकार से द्वारकापुरी भी वृष्णि वंशियों द्वारा सुरक्षित थी, जो भगवान कृष्ण के ही समान शक्तिशाली थे, जहाँ तक कि उनके इस धरती पर शक्ति प्रदर्शन का प्रश्न था। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इस अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारका में वापस आए हैं और अब प्रवेश कर रहे हैं द्वारका में। और द्वारका कैसे सुरक्षित है, क्योंकि पिछले श्लोक में कहा कि भगवान कई बार चले जाते हैं, कभी पांडवों से मिलने, कभी किसी और भक्त से मिलने, कभी किसी राक्षस को मारने, कभी किसी राजा से युद्ध करने, तो बारंबार चले जाते हैं, तो फिर उनकी नगरी सुरक्षित कैसे रहती है। तो उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि उनकी नगरी अलग अलग वंशों का वर्णन कर रहे हैं, जैसे कुकुर हैं, अंधक हैं, वृष्णि वंश हैं, तो ये सब उनकी रक्षा करते हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में नाग लोकों का वर्णन करते हैं, क्योंकि श्लोक में भोगवती नाग लोकों की जो राजधानी है उसका वर्णन हुआ है। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे नाग लोक नागों के द्वारा सुरक्षित हैं, उनका ऐश्वर्य नागों के द्वारा सुरक्षित है, इसी प्रकार कृष्ण की नगरी द्वारका ये वृष्णि वंशियों, अंधक वंशियों, भोज वंशियों, मधु वंशियों के द्वारा सुरक्षित है। तो इस तात्पर्य से हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं प्रभु भगवान, यह ऐसा श्लोक क्यों बोला गया, क्यों नाग लोकों से तुलना की गई द्वारका की। द्वारका भगवान की नगरी है, नाग लोक ये एक निचला लोक है, पृथ्वी से भी नीचे नीचे के लोकों में आता है, जहाँ सर्प रहते हैं, द्वेषी जीव रहता है। तो ऐसे लोक की तुलना द्वारका से क्यों की गई है इस श्लोक में। एक कारण प्रभुपाद दे रहे हैं, क्योंकि वो भी बड़ा ऐश्वर्यशाली लोक है, बहुत ऐश्वर्य है वहाँ पर, ऐसी ऐसी मणियां हैं उनके मस्तक पर जिससे सारा लोक प्रकाशमान होता है, तो कितना ऐश्वर्य होगा। तो इसलिए ऐसे ऐश्वर्य के होते हुए ऐसा ही ऐश्वर्य द्वारका में था। तो एक तुलना ऐश्वर्य की दृष्टि से की गई है कि जैसा ऐश्वर्य स्वर्गिक सांपों के, आज साधारण सांप नहीं है ये दिव्य, दिव्य नहीं कहना चाहिए, ये स्वर्गिक, अर्थात इस जगत में भी कोई साधारण सांप नहीं है, देवताओं की श्रेणियों में आने वाले सर्प हैं। तो ऐसे सांपों के ऐश्वर्य का वर्णन इसीलिए तुलना की गई। जिस प्रकार यहाँ दो शहरों की या दो राज्यों की तुलना की गई, दो लोकों की तुलना की गई है, इसी प्रकार हम भी एक दो पुरी, जैसे द्वारकापुरी और भोगवती, तो इसी प्रकार दो तरह के शहरों की, राज्यों की तुलना हम कर सकते हैं। एक है जिसका वर्णन भगवान भगवद गीता में करते हैं, नवद्वारे पुरे देही। भगवान कहते हैं जैसे आपका अलग अलग पुर होता है, जैसे सोलापुर है, कोल्हापुर है, ऐसे एक नवद्वारपुर है, नवद्वार पुरे देही, जिसमें जीव रहता है, ये शरीर, ये नौ द्वारों का शरीर, ये नौ द्वारों का शहर है नवद्वारे पुरे देही। और इसके परे एक शहर है, एक राज्य है जहाँ भगवान रहते हैं। तो एक नागलोक, एक द्वारका, एक भोगवती, एक द्वारका, एक नवद्वार पुरे देही, नवद्वारपुर, और एक आध्यात्मिक जगत। तो इस नवद्वारपुरे में जैसे नागलोकों में नाग रक्षा करते हैं अपने ऐश्वर्य की, बहुत ऐश्वर्य है लेकिन उस ऐश्वर्य की रक्षा नाग करते हैं, इसी तरह हमारे इस शहर में भी बहुत ऐश्वर्य है और उसकी रक्षा कौन करते हैं? जीव नहीं करता। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में इस शरीर के किसी ऐश्वर्य की रक्षा नहीं करता। इस शरीर का ऐश्वर्य क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मत्सर्य, ये इस शरीर का ऐश्वर्य है, नवद्वारपुर का ऐश्वर्य। जैसे भोगवती का ऐश्वर्य वहाँ के मणि हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उन मणियों का कोई लाभ नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। इसी तरह हमारे इस शहर में बहुत सारे मणि हैं, बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, और उनकी रक्षा हमारी इच्छाएं करती हैं। हमारी इच्छाएं उन्हें बाहर जाने नहीं देती। इसका एक बहुत सुंदर वर्णन नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में किया है, जहां वो पुरंजन की कथा कहते हैं। राजा प्राचीन बहिष्यत को नारद मुनि एक अन्य राजा की कथा सुना रहे हैं, पुरंजन की कथा, और उसमें वो कहते हैं कि राजा पुरंजन एक ऐसे जगह पर गए, एक ऐसे स्थान में गए जो बहुत सुंदर नगर था, नौ द्वारों से घिरा हुआ। नौ द्वारों के नगर में गया राजा पुरंजन और बहुत सुंदर था वो, बाहर बहुत सारे बगीचे थे और वृक्ष थे, ऐसा वर्णन किया, ऐसे नगर में पुरंजन गया। तो नारद मुनि समझा रहे थे कि जीव जब ऐसे शरीर में बद्ध हो जाता है, इस नौ द्वार वाले शरीर में बंध जाता है, तो फिर वो इच्छाओं से घिर जाता है, ऐसी इच्छा जो भगवान से दूर ले जाए, अर्थात भगवान के रक्षण से दूर होकर किसी भौतिक वस्तु या किसी भौतिक इच्छा के अधीन हो जाता है, और यही उसके पतन का कारण है। तो जीव के पतन का कारण है अविद्या और अविद्या से उत्पन्न इच्छाएं, ये मूल कारण। इस जगत में हमारे बने रहने का, हमारे आने का और इस जगत में जब तक हम तीन गुणों में फंसे रहते हैं, इस सब का एक ही कारण है, अविद्या, अज्ञान, और अज्ञान से जनित इच्छाएं। बहुत सारी इच्छाएं हैं हम सबकी। कोई धन कमाना चाहता है, कोई संपत्ति पाना चाहता है, कोई यश पाना चाहता है, कोई इस जगत में बड़े आराम से रहना चाहता है, सुविधाएं चाहता है, कृष्ण को नहीं चाहता। यही जीव की सबसे बड़ी मूर्खता है। बाकी सारी चीजें हम चाह रहे हैं, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सुविधा चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए। लेकिन वही जीव जब अपनी चेतना को भक्ति के द्वारा शुद्ध करता है, तब वो इन सब चीजों की कामना नहीं करता, केवल कृष्ण की कामना करता है, और तब कृष्ण उसे वो सारी चीजें प्रदान करते हैं। देखिए, इस जगत में व्यक्ति बिना कृष्ण के उन चीजों के पीछे भागता है, वो चीजें प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब वही जीव शुद्ध चेतना में इन चीजों के पीछे भागना छोड़कर कृष्ण के पीछे भागता है, कृष्ण को पकड़ता है, तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। ये भक्ति का विज्ञान है, बहुत सरलता से आ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ छोड़कर कृष्ण को पकड़ा, घर त्याग दिया, व्यापार त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, वृंदावन त्याग दिया, स्थान जहां बड़ी सुविधा थी, आराम से वृद्धावस्था में वो अपना जीवन बिता सकते थे, उस सब को त्याग कर उन्होंने केवल कृष्ण को पकड़ा, कृष्ण भक्ति को पकड़ा। और वो प्रभुपाद जिनके पास वृंदावन से दिल्ली जाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, जिनके पास एक बीटीजी मैगजीन छापने के पैसे नहीं होते थे, वर्णन है कि जब श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉडेड मैगजीन छापते थे, तो जो छापने वाला, जो पेपर वाला था, उससे उधार लेते थे। जो छापने वाला था उनको कहता था, स्वामी जी आपके पास पैसा नहीं है, क्यों छाप रहे हो? तो वो प्रभुपाद जिनके पास एक बीटीजी छापने का पैसा नहीं था, उन्होंने दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक ग्रंथों की प्रेस बनाई, बीबीटी। आज वो दुनिया के वर्ल्ड नंबर वन है धार्मिक ग्रंथों को प्रिंट करने में, दुनिया की सबसे बड़ी प्रेस। तो भगवान ने दिया। जिनके पास कुछ नहीं था, उनके पास धन नहीं था कि वो वृंदावन से दिल्ली आ सके, और उन्हें इतना धन दिया कि 14 बार सारी दुनिया में प्लेन में घूम के आ गए, तो भगवान ने दिया। जिनको कोई जानता नहीं था, वहां छोटे से दो कमरों में रहते थे वृंदावन में, आप लोग गए हैं राधा दामोदर मंदिर में, बहुत छोटे कमरे हैं, बस वहां रहा करते थे, कोई अनुयायी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, उस व्यक्ति के हजारों शिष्य हो गए, सारी दुनिया में, सारे जगत में उनका नाम फैल गया। तो प्रभुपाद को दिया भगवान। तो प्रभुपाद के उदाहरण से हम सीखते हैं कि केवल कृष्ण को पकड़ने से सब कुछ आता, और आया, प्रभुपाद ने दिखाया। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई झूठा वादा नहीं है, ये सामने है। धन, कितना धन था प्रभुपाद के पास जब यहां से गए? तो कितना धन था? कुछ नहीं। आए तो करोड़ों रुपया उस समय पे प्रभुपाद के पास। जब गए तो रहने के लिए स्थान नहीं था, भाड़े के कमरे में रहते थे, किराए के कमरे में, और उसका भी किराया देना मुश्किल होता था। 108 मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, जुहू मंदिर, मायापुर, वृंदावन, सारी दुनिया में 108 मंदिर। तो अगर ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम भौतिक दृष्टि से भी भोग चाहते हैं, अगर भौतिक दृष्टि से भी हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई ऐश्वर्य चाहिए, प्रगति चाहिए, कृष्ण के पास आना चाहिए। प्रसिद्धि प्रभुपाद को मिली, धन प्रभुपाद को मिला, अनुयायी प्रभुपाद को मिले, संपत्ति प्रभुपाद को मिली, सुविधा प्रभुपाद को मिली। एक बार भक्तों ने एक बहुत बड़ी गाड़ी प्रभुपाद को दी, तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि ठीक है प्रभुपाद ये गाड़ी, प्रभुपाद ने कहा आपको मेरे लिए सोने की कार देनी चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है क्या, लोहे की, आजकल तो लोहे भी नहीं पतरे की कारें आती, बोले ये क्या कार दी है, मुझे सोने की कार देना चाहिए, क्यों, कृष्ण का प्रतिनिधि हूं मैं। प्रभुपाद को दिया बड़े बड़े आसन, बड़े बड़े महल, प्रभुपाद पैलेस बनाया गया, तो और क्या व्यक्ति मांग सकता है। तो ये प्रमाण है कि कृष्ण देते हैं। तो क्या कृष्ण केवल हमें भौतिक चीजें देते हैं? क्या कृष्ण केवल हमें कुछ धन, कुछ मान सम्मान, कुछ अनुयायी, कुछ संपत्ति देते हैं, या किसी और चीज की भी रक्षा करते हैं? अब जब तक जीव नव द्वार में रहता है, नव द्वारे पुरे देही, इस शरीर में रहता है, इस शरीर के अधीन रहता है, तब तक वो अपने ऊपर विश्वास करता है, इसीलिए उसको भगवान का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब जीव भगवान पर आश्रित हो जाता है, तब भगवान कैसी रक्षा करते हैं, भगवान किस चीज की रक्षा करते हैं? क्या केवल हमारे शरीर की रक्षा करते हैं? नहीं, सबसे पहले जब हम भगवान को समर्पण करते हैं तो भगवान हमारी श्रद्धा की रक्षा करते हैं, हमारी श्रद्धा को बनाए रखते हैं। आप जान लीजिए ऐसे कलयुग में जहां वातावरण बिल्कुल भक्ति के विरुद्ध है, हर चीज आपको भगवान से दूर खींच रही है, आप सड़क पर जाइए तो ऐसे ऐसे चित्र हैं, निश्चित भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। आप ट्रेन में जाइए, प्लेन में जाइए, कहीं जाइए, बस में जाइए, ऐसा वातावरण ही नहीं है कि कृष्ण का स्मरण हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस में चलें और महामंत्र चल रहा हो बस में, केवल कृष्ण के चित्र लगे हों, सब लोग तिलक लगाकर बैठकर जप कर रहे हों, कितना अच्छा होगा, ऐसी बस में घुसते ही कृष्ण का स्मरण। ऐसा नहीं है, आप एकदम विचित्र प्राणी माने जाते हैं जैसे ही आप बस में प्रवेश करते हैं, अगर आपने तिलक लगाया है, अगर आपके हाथ में माला है। हमें एक बार एक नेवी के ऑफिसर बता रहे थे, हमने वहां प्रोग्राम किया था तब, तो बहुत बड़े ऑफिसर सब आए थे, तो एक ऑफिसर बता रहे थे कि वो दूसरे एक ऑफिसर जो हमेशा जप करते थे, तो बोले मैं उनको देखता था कि वो बैठ के कुछ तो ऐसे थैली में हाथ डाल के कुछ करते हैं, मुझे बड़ा विचित्र लगता था कि ये व्यक्ति करता क्या है अंदर हाथ डाल के ऐसा। तो बोले मैंने बहुत समय सोचा लेकिन पूछा नहीं, फिर कई बार जब रहा नहीं गया तो एक दिन मैंने उसको पूछ ही लिया, तुम करते क्या हो अंदर डाल, तो फिर उन्होंने दिखाया निकाल के कि माला पे जप कर। तो हम लोग विचित्र प्राणी हैं उन लोगों के लिए, अगर कहीं बस में घुस जाए, प्लेन में घुस जाए, लोग ऐसे देखते हैं कि कौन से प्लैनेट से आ गए हैं, ये क्या लोग हैं। तो देखिए बाहर का सारा वातावरण हमें खींच रहा है भगवान के विरुद्ध, बस में कोई ऐसा वातावरण नहीं है, ट्रेन में वातावरण नहीं है, प्लेन में नहीं है, किसी ऑफिस में नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, स्कूल में नहीं है, सब जगह केवल भगवान के विरुद्ध खींचा जा रहा है। अभी हमें कल माता जी बता रहे थे उनकी बच्ची को स्कूल में तिलक लगाकर जाने की अनुमति नहीं है, मना किया है तिलक नहीं लगा के जाना, ये भारत है, मेरा भारत महान, स्कूल में मना है तिलक लगा के जाना। तो अगर कोई चाहता भी है भगवान के पास जाना, भगवान का स्मरण करना, तो उसको खींच लिया जाता है, नहीं भगवान की याद नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे वातावरण में भी हम सब भगवान का नाम ले रहे हैं, हम सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कौन रक्षा कर रहा है हमारी श्रद्धा की, कैसे ये श्रद्धा बनी हुई है। और ये महत्वपूर्ण है श्लोक में, कि श्लोक में ये नहीं कहा कि द्वारका की रक्षा कृष्ण कर रहे हैं, कहना तो यही चाहिए था कि द्वारका की रक्षा कृष्ण कर रहे हैं, स्वाभाविक है हर चीज की रक्षा कृष्ण ही करते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं कहा गया अंधक, भोज, मधु, वृष्णिवंशी, ये रक्षा कर रहे हैं, क्या कृष्ण रक्षा नहीं करते द्वारका की, तो ये क्यों कहा गया? ये समझाने के लिए कि जैसे हम बता रहे थे कि ऐसे वातावरण में भी हमारी चेतना की, हमारी श्रद्धा की रक्षा हो रही है, इस वातावरण में भी हम ये भगवान की भक्ति करना चाहते, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये रक्षा कौन कर रहे हैं? अंधक वंशी, वृष्णि वंशी, भोज वंशी, अर्थात भगवान के भक्त। ये सब भगवान के नित्य पार्षद हैं जो भगवान के साथ उन्हीं अलग अलग कुलों में आए, यदुवंशियों में। तो ये भगवान के भक्त हैं। तो भगवान सबसे पहले हमारी श्रद्धा की रक्षा करते हैं। शरीर की रक्षा आवश्यक नहीं है, हाँ जब आवश्यक होती है भगवान शरीर की भी रक्षा करते हैं। अर्जुन की अर्जुन तो युद्ध में कब के मर गए होते, केवल कृष्ण की रक्षा से बचे रहे। जब तीर चलते थे तो एक तीर सीधे सीधे अर्जुन के गले में आकर लगने वाला था, क्योंकि वहां पर कोई कवच नहीं होता है। कवच यहां तक पहना जाता है, ऊपर पहना जाता है, लेकिन यहां कोई कवच नहीं होता। यहां से यहां कर्ण ने तीर मारा था, यहां पर अर्जुन को लगने वाला था, भगवान ने रथ नीचे कर दिया, वो तीर उसके मुकुट को लेकर चला गया। अर्जुन तो कब का मर गया होता। जयद्रथ, अर्जुन ने घोषणा कर दी कल शाम तक, सूर्यास्त होने तक अगर जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जयद्रथ को छुपा दिया था दुर्योधन ने, सारी शक्ति लगा दी थी, कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है। आज दुर्योधन ने कहा बस केवल हमें जयद्रथ को बचाना है, छुपा दो उसको, अर्जुन अपने आप मर जाएगा। सारी शक्ति लगी थी, जितने भी लोग थे, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, जितने भी लोग थे सब लगे थे केवल जयद्रथ को बचाने में। और जयद्रथ छुपा हुआ था, शाम हो गई, सूर्यास्त होने वाला है, पता ही नहीं जयद्रथ का कहां है। अर्जुन बड़ी तीव्रता से युद्ध कर रहे हैं लेकिन जयद्रथ को नहीं ढूंढ पाए। समय हो गया, अब भगवान ने क्या किया, बहुत सुंदर वर्णन है महाभारत में। बाकी सारे लोग देख रहे हैं कि अभी सूर्य है, बस अभी अस्त होने वाला है, अभी हुआ नहीं है सूर्यास्त, लेकिन भगवान ने योजना की कि जयद्रथ जहां छुपा बैठा था उसको वहां पर पता चला सूर्यास्त हो गया, और किसी को पता नहीं। दुर्योधन ने नहीं देखा, कर्ण ने नहीं देखा, शकुनी ने नहीं देखा, जयद्रथ ने देखा, सूर्यास्त हो गया। जोर से अपने रथ पर बाहर निकलकर आ गया जहां बैठा था छुपकर, हंसता हुआ, महाभारत में हंसता हुआ बाहर आया, अट्टहास करता हुआ, हा हा हा, ये देखो मैं यहां पर हूं। और उस तरफ दुर्योधन, द्रोणाचार्य ये सब देख रहे, पागल क्या हुआ इसको, अरे हम जिसको बचाने के लिए सारी अपनी शक्ति लगा रहे, खुद सामने आ गया अर्जुन के, और भी हंसता हुआ, और वो कह रहे हैं जयद्रथ पीछे जाओ, जयद्रथ पीछे जाओ। जयद्रथ सोच रहा है मेरा गुणगान कर रहे हैं, और जयद्रथ और जोर से हां 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 हंस रहा। और ऐसी अवस्था में अर्जुन को भी हंसी आ गई। वहां पर लिखा है कि अर्जुन ने जब देखा कि जिसको मैं जिन दिन भर ढूंढ रहा था बड़ी तीव्रता से, ये मूर्ख मेरे सामने मरने के लिए हंसता हुआ आ रहा है, अर्जुन भी हंसने लगे जोर जोर से। और तब कृष्ण ने अर्जुन को कहा हंसना बंद करो, मारो पहले उसको, सामने आया है वो तुम्हारे, नहीं तो चला गया तो सूर्यास्त हो जाएगा, तो अर्जुन उस दिन मर गए होते अगर कृष्ण ने रक्षा नहीं की होती, और कर्ण से रक्षा नहीं की होती अर्जुन उस दिन मर गए होते। भीष्म के सामने अर्जुन टिक नहीं सकते थे अगर भगवान रथ का पहिया लेकर भागे नहीं होते, अर्जुन उस दिन मर गए होते। तो इसलिए भगवान जब शरीर की रक्षा करनी हो तब करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जब नहीं करनी थी तो अर्जुन भील बालकों से हार गए। जो अर्जुन भीष्म से नहीं हारे, द्रोणाचार्य से नहीं हारे, कृपाचार्य से नहीं हारे, अश्वत्थामा से नहीं हारे, वो एक साधारण भील बालकों से हार गए, जिनके धनुष बाण पेड़ की तान, पेड़ को तोड़कर बनाए हुए थे, हम लोग बचपन में कभी कभी बनाते थे, बस उनसे हार गए, क्योंकि तब रक्षा नहीं करनी थी भगवान। तो भगवान केवल शरीर की रक्षा नहीं करते हैं, वो तो कभी कभी करते हैं, जैसे द्रौपदी की जब द्रौपदी ने पुकारा भगवान को तो भगवान आए नहीं, प्रयास किया द्रौपदी ने, दुशासन साड़ी खींचने लगा, सबको प्रयास कर लिया, अग्रे कुरु नाम अथ पांडवा नाम, कौरवों से कहा, पांडवों से कहा, किसी ने नहीं रक्षा की। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़ी हुई थी और भगवान को पुकारने लगी, भगवान नहीं आए। साड़ी जोर से खींच रहा था दुशासन, दोनों हाथ से छूट गई। अब एक हाथ से साड़ी पकड़ी है, एक हाथ से पुकार रही है भगवान को, भगवान नहीं आए। ऐसा एक जगह वर्णन है कि द्रौपदी ने उस साड़ी को अपने मुंह से पकड़ लिया अपनी रक्षा करने के लिए और दोनों हाथों को ऊपर करके भगवान को पुकार रही, भगवान नहीं आए। और उस समय जब द्रौपदी को पता चला कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुंह से भी साड़ी छूटी जा रही, इतनी जोर से दुशासन खींच रहा, तो कोई और रास्ता नहीं था, नाथ अनाथन काया जग में। तो जब द्रौपदी को पता चला कि एक ही नाथ है जगन्नाथ, और कोई नाथ नहीं है, मेरे पति, मेरे ससुर, मेरे वरिष्ठ, कोई मुझे बचा नहीं सकते, से दोनों हाथ ऊपर करके पुकारा, द्वारकावासी गोपीजन वल्लभ, हे गोविंद, हे गोपाल। वो जानती थी कि कृष्ण द्वारका में है इस समय, इसलिए द्वारकावासी ये शब्द उसने इस्तेमाल किया। वो जानती थी कि द्वारका में है, लेकिन फिर भी पुकारा, और भगवान तब आए। और बाद में द्रौपदी ने प्रश्न किया था कृष्ण से कि आप आए क्यों नहीं जल्दी मुझे बचाने के लिए, आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे सखा हैं, आपसे मेरा संबंध है, फिर आप क्यों नहीं आए। तो कृष्ण ने कहा कि जब तक तुम्हें अपने ऊपर विश्वास था, तुम अपने दोनों हाथों से पकड़ी थी, मतलब तुम्हें विश्वास था मैं बचा सकती हूं, एक हाथ से पकड़ी थी मैं बचा सकती, मुंह से पकड़ी थी मैं बचा सकती, जब तक तुम्हें अपने ऊपर विश्वास था मेरी आवश्यकता नहीं थी। तो उस समय में द्रौपदी के शरीर की रक्षा भले ना की हो, लेकिन चेतना की रक्षा की, कि द्रौपदी को स्मरण आया कि मुझे कृष्ण को पुकारना है निस्सहाय भाव में, इसलिए भगवान ने उसकी रक्षा की और भगवान फिर आए, शरीर की भी रक्षा। गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, हजार वर्षों तक युद्ध हो रहा है, भक्त है गजेंद्र, पूर्व जन्म में राजा इंद्रदुम्न, महान भक्त, लेकिन आज भगवान रक्षा नहीं कर रहे हैं। हजार वर्ष तक युद्ध चल रहा, थक गया है गजेंद्र, पानी में है मगरमच्छ, लड़ नहीं पा रहा, भगवान रक्षा नहीं कर रहा, लेकिन चेतना की रक्षा की उस समय में, और इसीलिए गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, प्रार्थनाएं अर्पण की, वो प्रार्थनाएं जो पूर्व जन्म में उन्होंने अर्पण की थी राजा इंद्रदुम्न के रूप में, किसने याद दिलाई वो प्रार्थनाएं, क्या जीवन भर गजेंद्र के रूप में वो प्रार्थना याद थी? नहीं, उसको यह भी नहीं पता था कि भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। वो अपने हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ आनंद ले रहा था, लेकिन भगवान ने रक्षा की, उसकी चेतना की, कब? जब बहुत आवश्यकता थी, जब उसने निस्सहाय भाव में भगवान को पुकारा, तो भगवान ने रक्षा की। तो इसलिए भगवान रक्षा करते हैं हमारी चेतना की, हमारी श्रद्धा की, वो श्रद्धा जो बड़ी कोमल है, और यही कारण है कि ऐसे कलयुग में भी हम सब थोड़ी बहुत भक्ति कर पा रहे हैं, ये प्रमाण है कि भगवान रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए कि मैं भक्ति नहीं कर सकता, भगवान मुझे कभी, भगवान तो केवल शुद्ध भक्तों को दर्शन देंगे, शुद्ध भक्तों की रक्षा करेंगे, मेरी नहीं। नहीं, भगवान आज भी कर रहे हैं, केवल हम देख नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि आज आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आज आप भक्ति में बने हुए हैं, आज आप ब्रह्मचारी हैं, आज आप एक अच्छे गृहस्थ के रूप में कार्य कर रहे हैं। भगवान की रक्षा, इसको पहचानिए, भगवान आज भी रक्षा कर रहे हैं। भगवान रक्षा करते भक्तों के द्वारा, अंधक, भोज, वृष्णि हमारे जीवन में भी उनको भेजते हैं। जब हम इस नवद्वारपुर में, इस शरीर में अपनी इच्छाओं को चलते भगवान को भूलते हैं, भगवान भक्तों को भेजते हैं रक्षा करने के लिए, जाओ रक्षा करो इसकी, याद दिलाते हैं भक्त आकर भगवान का ज्ञान, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के रूप। तो ऐसी रक्षा ये हमारे लिए आवश्यक है। शरीर की रक्षा आवश्यक नहीं है, भगवान भूखा रखे कोई बात नहीं। सुदामा को क्या दिया था भगवान ने? मित्र थे भगवान के, बचपन से उनके साथ रहे थे, थोड़ा समय अलग हो गए, कैसे रखा सुदामा को भगवान ने? गरीब। ऐसा एक जगह वर्णन है कि खाने के लिए नहीं था उनका, उनके बच्चों की पीठ और पेट एक हो गया था। पीठ और पेट एक होना है ना, एकदम कुछ खाने के लिए नहीं। और उस समय पत्नी ने कहा जाओ तुम्हारे मित्र राजा हैं उनसे मांग कर लाओ। सुदामा उस समय भी तैयार नहीं थे जाने के लिए। सुदामा की चेतना की रक्षा भगवान उस समय भी कर रहे थे। ये प्रमाण है कि वो गए नहीं, जानते थे कि कृष्ण से जाकर कुछ भी मांग सकते हैं, वो गए नहीं। उनकी पत्नी ने बहुत कहा जाओ जाओ, तब भी जाने के लिए तैयार नहीं। फिर जब पत्नी ने बहुत कहा तो सुदामा ने क्या सोचा, ये भगवान की योजना है, वो मुझे दर्शन देना चाहते हैं। उस समय भी वो मांगने नहीं गए थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जाके अपने मित्र से मांग लूंगा, वो दर्शन करने गए, इसीलिए मांगा नहीं। वहां गए, कृष्ण पूछ रहे हैं कुछ कहो मित्र, कोई किस लिए आए थे, कुछ कहना चाहते हो? नहीं कुछ नहीं, संतुष्ट। तो भगवान ने चेतना की रक्षा की। और फिर जैसे प्रभुपाद का हमने वर्णन किया, भौतिक ऐश्वर्य दिया, सुदामा को भी दिया। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, प्रभुपाद ने कुछ नहीं मांगा भगवान से, कोई ऐश्वर्य नहीं मांगा, कोई अनुयायी नहीं मांगे। अपनी प्रार्थना में प्रभुपाद लिखते हैं, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते, काष्ठे रपुतली जे तो नचाओ से मते। जैसे आपकी इच्छा हो, एक कठपुतली की तरह आप मुझे नचाइए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये रक्षा करते हैं भगवान। तो भगवान हमारी श्रद्धा की रक्षा करते हैं, दूसरा भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। अगर हमारे अंदर श्रद्धा के बाद भक्ति उत्पन्न हो जाए तो रक्षा भगवान करते हैं, भक्ति बनाए रखते हैं। मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, भगवान भक्ति बनाए रखते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान के संरक्षण पर आश्रित होना चाहिए। इस जीवन में अगर हम सफलता चाहते हैं तो भगवान पर पूर्ण आश्रित हो जाना चाहिए। कब कुछ लोगों को डर लगता है, वृद्धावस्था आ जाती है, घर छोड़ने में डर लगता है, क्या होगा, कहाँ रहूंगा, कौन खिलाएगा। मतलब भगवान पर आश्रय नहीं है, श्रद्धा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा दे देता है भगवान को, प्रभुपाद ने भारत छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, कोई भय नहीं था। इसीलिए अपनी प्रार्थना में वो लिखते, अपनी कविता में, आपके ऊपर आश्रित हूं, भक्ति ना ही वेद ना ही नामे खूब दारो। मेरा नाम भक्ति वेदांत है, लेकिन ना भक्ति है मेरे अंदर, ना वेद है, ज्ञान नहीं है। आप चाहें तो ये सब हो सकता है, बस ये आश्रय। तो हम लोगों को डर होता है, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, घर छोड़ना नहीं चाहता, बाहर जाऊंगा तो कौन खिलाएगा, कहाँ रहूंगा, वृंदावन चले जाओ। अच्छा वृंदावन जाओ तो पहले से सारी व्यवस्था करता है, रहने के लिए घर होना चाहिए, घर में गर्म पानी आना चाहिए, ऊपर जाने के लिए सब कुछ होना चाहिए व्यवस्था, प्रसाद देने के लिए कोई एक होना चाहिए, क्या आश्रय है हमारा। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है, देखिए भगवान उसकी रक्षा करते। प्रभुपाद गए, प्रभुपाद को क्या पता था वहां पे क्या खाएंगे। जब शुरुआत में प्रभुपाद गए, जिनके घर में रहते थे अग्रवाल, उनके फ्रिज में जहां कुत्ते को खिलाने का मांस रखा जाता था, उसके साथ प्रभुपाद अपना प्रसाद रखते थे, खाने वाली चीज। तो कोई प्रभुपाद को पहले से निश्चित नहीं था कि सब कुछ फिक्स है, पूर्ण आश्रय भगवान के ऊपर। विदेश चले गए, एक अनजाने देश में जहां किसी को नहीं जानते थे, भगवान पर आश्रित। तो ये आश्रय चाहिए, ये श्रद्धा चाहिए। और भगवान जब ऐसी भक्ति की सदैव रक्षा करते हैं, ये विश्वास हमें होना चाहिए, और इसी को समर्पण कहते हैं। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरी तरह से करें, हो सकता है कि भगवान, और कब से योजना करते हैं भगवान, बहुत पहले से। एक उदाहरण देते हैं, भगवान जानते थे कि आगे चलकर युद्ध होगा 18 दिन का, और जब वो युद्ध होगा तो उसमें एक दिन द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करेंगे, और उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए केवल अर्जुन योग्य व्यक्ति है, और अगर अर्जुन नहीं रहा, अर्जुन को दूर ले जाएंगे तो फिर युधिष्ठिर को पकड़ लिया जाएगा और पांडव युद्ध हार जाएंगे। तो भगवान ने योजना कब से की? अभिमन्यु जब गर्भ में आया 16 साल पहले, युद्ध होने के 16 साल पहले भगवान ने चक्रव्यूह का वर्णन किया अर्जुन को। सुभद्रा को प्रेरणा दी, भगवान कथाएं सुनाया करते थे उस समय सुभद्रा को, युद्ध की बात नहीं सुनाते थे। कोई ऐसा होता है, आपने सुना किसी की बहन गर्भवती है और वो भाई आकर युद्ध की बातें सुना रहा है, ऐसे भागना चाहिए, ऐसे तोड़ना चाहिए, नहीं, वो अच्छी कथाएं सुनाते थे। एक दिन सुभद्रा ने कहा, मुझे युद्ध का वर्णन सुनना है, युद्ध में कौन कौन से व्यू बनते हैं बताइए। और कृष्ण ने पूछा, तुम क्यों युद्ध का वर्णन सुनना चाहती हो? उसने कहा, पता नहीं लेकिन मेरी इच्छा हो रही है। और भगवान ने अलग अलग व्यू का वर्णन किया और विशेष करके चक्रव्यूह का वर्णन किया। उस समय भगवान ने योजना बनाई कि आज से 16 साल बाद ये बालक एक दिन युधिष्ठिर की रक्षा करेगा। तो देखिए, भगवान जब बनाते हैं योजना, हमें नहीं पता होता, हमें लगता है हमारे जीवन में जो हो रहा है गलत हो रहा है। भगवान कब से योजना बनाते हैं आपको अपने पास लाने के लिए। अब आप अपने अपने जीवन के विषय में सोचिए, हम लोगों ने जीवन दिया भगवान को, हम कृष्ण भक्ति में आए, एक 20 साल पहले का, 30 साल पहले का जीवन सोचिए, क्या थे हम लोग, क्या क्या हुआ हमारे जीवन में, भगवान ने कहां कहां से योजना बनाई हमको भक्ति तक लाने की। हम सबके जीवन में बनाई है योजना, कहां थे, भक्ति से बिल्कुल दूर, कोई भक्ति का वातावरण नहीं, स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये ब्रह्मचारी बनेगा, ना हमने सोचा था ना किसी और ने सोचा। भगवान ने कब से योजना बनाई, क्या क्या किया जीवन में, ऐसे घुमा 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 के लेकर आ गए बस। तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान हमारी श्रद्धा की रक्षा करते हैं, भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। और फिर अगर भगवान सोचते हैं कि इस व्यक्ति को भौतिक ऐश्वर्य देना चाहिए तो वो भी देते हैं, जो कमी है भगवान पूरी करते हैं। योगक्षेमं वहामि अहम्, मैं देता हूं, ऐसा विश्वास हमें भगवान के ऊपर, भगवान की भक्ति के ऊपर होना चाहिए, और तब जाकर हम जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। जीवन में सच्चा सुख तब मिलता है जब हमें पता हो कि कोई हमारी रक्षा करने वाला है। जब व्यक्ति को एक असुरक्षितता का अनुभव होता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, और इस जगत में यही कारण है कि व्यक्ति सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कोई असुरक्षित है। किसी को अपने भविष्य की सुरक्षा की चिंता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, आगे क्या होगा, कल को मैं मर गया, कल को मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटल में गया, देने के लिए 50,000 रुपया भी नहीं है, क्या होगा, असुरक्षितता। किसी को धन के कारण असुरक्षितता, अपने भविष्य की असुरक्षितता है, या किसी को अन्य, हर कोई असुरक्षित है इस जगत में, क्योंकि भगवान को समर्पण नहीं। जो व्यक्ति भगवान को, जिसको ये जान लिया कि कृष्ण है मेरी रक्षा करने के लिए, अगर समझ लीजिए कि हर व्यक्ति को ये विश्वास हो कि कोई है मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे पास धन समाप्त हुआ ये व्यक्ति मुझे लाखों रुपया दे सकता है, मैं बीमार हुआ ये व्यक्ति मुझे ठीक कर सकता है, मैं मर गया ये व्यक्ति मुझे अच्छा जीवन दे सकता है अगला, अगर ये विश्वास हो व्यक्ति असुरक्षित नहीं होगा और सदैव खुश रहेगा। हमारे दुख का कारण क्या है? हम असुरक्षित हैं। हम ब्रह्मचारी बन जाते हैं और फिर असुरक्षित, क्यों? बूढ़ा हो गया तो कौन ध्यान देगा। फिर क्या ब्रह्मचारी को क्या असुरक्षितता है, उनको भी असुरक्षितता रहती, मैं क्या होगा आगे मेरा, अगर मैंने ऐसा किया तो, अगर मैं बीमार हो गया, अगर मैं बूढ़ा हो गया, क्या हो, अरे भगवान संभालेंगे, ये विश्वास नहीं है, इसीलिए चिंता। लेकिन जिसको ये विश्वास है कृष्ण है, मेरे सर पर उनका हाथ है, मैं उनके चरणों में हूं, अगर मुझे कुछ भी हुआ वो बचा लेंगे, व्यक्ति सुखी है। ये विश्वास शिला प्रभुपाद को था। मैं अमेरिका जा रहा हूं, मुझे पता नहीं वहां कैसे लोग हैं, रजस्तम गुण सबाई आच्छन, रज और तमो गुण से सब भरे पड़े हैं वहां पर, लेकिन कृष्ण है। प्रभुपाद ये कहते हैं, ये विश्वास था, इसलिए सुरक्षित, कोई चिंता नहीं उन्हें। तो ऐसा विश्वास हमें भक्ति में होना चाहिए। जिस दिन हमें यह विश्वास हो गया कि कृष्ण है हमारे लिए, वो सदैव खड़े हैं हमारे लिए, हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। और इस जगत में हम प्रसन्न इसीलिए नहीं है क्योंकि असुरक्षितता का भाव बना हुआ। क्यों बना है इस जगत में असुरक्षितता का भाव? क्योंकि ये जगत शाश्वत नहीं है, रहने वाला नहीं है, इसीलिए असुरक्षितता है जीव को। शाश्वत जीव अशाश्वत स्थान में है, निश्चित असुरक्षित है। शाश्वत जीव शाश्वत स्थान में है, पूर्ण सुरक्षितता। और यही इस तात्पर्य का सार है। नागलोक से द्वारका में अपने आप को स्थानांतरित करना, अर्थात इस जगत से, इस भौतिक जगत से, जहां हम अपनी इच्छाओं के चलते, अपनी कामनाओं के चलते फंसे हुए हैं, यहां से भगवान की संरक्षण में, भगवान की सुरक्षितता में अपने आप को स्थापित करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो जैसे भगवान सब कुछ रक्षा करते हैं, तो आपको जो भूख लगती है उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं, इसीलिए प्रसाद की व्यवस्था करके रखते हैं। यस ब्रो, चक्रव्यूह का वर्णन? हाँ, जब अभिमन्यु गर्भ में था तो सुभद्रा को वो सुना रहे थे, इसीलिए उसके छह द्वार तोड़ने तक उन्होंने सुनाया और अभिमन्यु सुन रहा था। और सातवां द्वार कैसे तोड़ना है ये बताने वाले थे, तब तक सुभद्रा को नींद आ गई। देखिए परंपरा है, हमको भी भागवत सुनते सुनते नींद आती है ना, सुभद्रा को भी आ गई नींद, परंपरा है। तो सुभद्रा को कृष्ण सुना रहे हैं तब भी नींद आ गई, क्या कह सकते हैं बताइए। जब कृष्ण भागवत सुना रहे हो तब सुभद्रा को नींद आ गई, तो सुभद्रा को नींद आ गई, तो सातवां द्वार वो बोल नहीं पाए। तो इसीलिए जब वो स्थिति आई तो अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं जाऊंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं तुम छोटे बालक हो। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने सीखा है, मैं जानता हूं। लेकिन उसने कहा एक ही गलती है, मैं अंदर जाना चाहता हूं, छह द्वार तोड़ सकता हूं। चक्रव्यूह के सात द्वार हुआ करते थे, द्वार तोड़ते 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 अंदर जाना है और फिर बाहर निकलना है। तो वो अगर कर दिया तो सारी सेना ध्वस्त, नहीं कर पाए तो व्यक्ति फंस जाता था, उसमें मर जाता था। तो उन्होंने कहा कि मैं तोड़ सकता हूं, अंदर घुस सकता हूं, छह द्वार तोड़ दूंगा, लेकिन सातवां मुझे तोड़ना नहीं आता, जिससे बाहर निकलना है वो मुझे नहीं आता। तो युधिष्ठिर भीम इत्यादि ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम आगे आगे तोड़ते हुए चलो, हम पीछे पीछे आएंगे। तुम द्वार खोलोगे हम पीछे घुस जाएंगे, तुम दूसरा खोलोगे हम पीछे घुस जाएंगे। तो जब तुम्हें सातवें द्वार पर पहुंचोगे तो हम सब तुम्हारे साथ होंगे, निकल जाओगे बाहर। उसने कहा ठीक है। तो आए, उन्होंने पहले ही द्वार पर जयद्रथ को खड़ा किया था, क्योंकि शिवजी ने वरदान दिया था जयद्रथ को। जब जयद्रथ अपमान हो गया था, जयद्रथ का उसने प्रयास किया था द्रौपदी के हरण का, वन से अपमान हो गया, तो जाकर उसने तपस्या की शिवजी की और शिवजी से वरदान मांगा, मैं पांडवों को मारना चाहता हूं। शिवजी ने कहा हो नहीं सकता, शिवजी भी नहीं दे पा रहे। देखो शिवजी के पास गया कि मैं पांडवों को मारना चाहता हूं, वरदान दीजिए, शिवजी ने कहा हो ही नहीं सकता, तुम जानते हो कौन है पांडव? तो उन्होंने कहा ये अर्जुन ये नर है और ये कृष्ण नारायण है, तुम कैसे मारोगे, मैं वरदान दे ही नहीं सकता। शिवजी ने स्पष्ट कह दिया ये नर नारायण है। उसने कहा नहीं मुझे तो यही वरदान चाहिए। तो शिवजी ने कहा ठीक है, मैं ऐसे कर सकता हूं कि एक दिन जीवन में केवल तुम चारों को, नर नारायण के बारे में तो मैं वरदान दे ही नहीं सकता, शिवजी का मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन बाकी चारों को एक दिन केवल तुम रोक पाओगे, मार नहीं सकोगे, रोक पाओगे। तो उस वरदान के कारण उस दिन चक्रव्यूह के पहले ही दरवाजे पर जयद्रथ को खड़ा किया गया था। तो अभिमन्यु आए पीछे से तेजी से तोड़ते, तो उनको पता था कैसे तोड़ना है। चक्रव्यूह वही खोल सकता था जिसको पता है, क्योंकि उसमें चक्रव्यूह ऐसा था कि सारी सेना ऐसे ऐसे चलती थी, पूरा चक्र घूमता था, और तोड़ने के लिए अगर कोई तोड़ नहीं पाया तो उसको चारों तरफ से तीर आके लग जाएंगे। तो उसको पता होना चाहिए कि भागते जाते समय कहाँ तीर चलाना है। अगर लेफ्ट साइड में से ऐसे घूम रहा है तो तीर राइट में चलाना, ऐसे सारा उसको पता होना चाहिए। तो ये अभिमन्यु को पता था, इन लोगों को नहीं पता था। तो इन्होंने काम पीछे पीछे, तो अभिमन्यु तोड़ता हुआ जा रहा था, सबको मारता हुआ, वो जो पहले गेट पे जितने भी सैनिक थे उनको मारता हुआ वो प्रवेश कर गया। तो जयद्रथ खड़ा था, जयद्रथ को भी उसने हटा दिया क्योंकि उसको पता था कैसे हटाना है, तो उसने हटा दिया। लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया, जयद्रथ फिर आ गया सामने। और उस दिन उस वरदान के कारण, जयद्रथ की शक्ति के कारण उसने नहीं रोका भीम इत्यादि को, वरदान के कारण वो दिन था कि वो चारों को रोक पाया। न युधिष्ठिर अंदर जा सके, न भीम अंदर जा सके, न नकुल, न सहदेव, उन सबको उसने रोक दिया। अभिमन्यु अकेला अंदर चला गया। और फिर उसको दूसरा मार्ग भी पता था, दूसरा उसने गेट तोड़ दिया, उसने देखा पीछे कोई नहीं है। तो अब अभिमन्यु के लिए क्या चारा था, एक वो वापस चला जाए, छोड़ दे। तो वापस चला जाता तो निश्चित था कि युधिष्ठिर इत्यादि को वो लोग बंदी बना लेते, क्योंकि जब व्यक्ति अंदर है तो सबका ध्यान उसके ऊपर होता है, तो वो युधिष्ठिर पर ध्यान नहीं जाएगा। तो अभिमन्यु के लिए एक निर्णय लेना था कि आज मैं क्या करूं। उसने देखा पीछे घूम के कोई नहीं आ पाया, अकेला है वो, एक सैनिक नहीं, अकेला घुस गया था। तो अब उसके लिए एक ही चारा था, या तो वो वापस चला जाता, बच जाती उसकी जान, या फिर अंदर घुस जाता। तो उसको पता था वो बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन जितने लोगों को मार सकेगा मार देगा। तो उसने अंदर जाने का निर्णय किया, घुस गया अंदर। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तोड़ दिया, उसके बाद फंस गया। और उसके बाद सारे महारथियों ने, उस समय भी एक ने नहीं मारा, सारे महारथियों ने मिलकर उसको मारा। सब एक इधर से चला रहे, एक इधर से, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी और ये सब उसको मारते। तो सब ने मिलकर मारा, इतना शक्तिशाली था कि अगर अकेले वो लोग करते तो वो नहीं मरता था। तो अभिमन्यु को मार दिया गया। तो इसीलिए अभिमन्यु को ये कृष्ण ने सिखलाया था। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। तो आज दोपहर को रविवार का कार्यक्रम होगा, उद्धवानंद प्रभु दोपहर का प्रवचन देंगे, विशेष प्रवचन अधिक मास के ऊपर, पुरुषोत्तम मास आ रहा है तो उसके ऊपर प्रवचन होगा। तो कृपया आप सब समय पर आइए, इसका लाभ लीजिए। हरे कृष्ण।